نحمده ونصلي على رسوله الكريم. الحمد لله رب العالمين، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تو اب جو ہے سبق نمبر ہے 185 اور سورت نور پر ڈسکشن ہے، اور سورت نور سے متعلقہ سوال و جواب. اور آپ کلاس کے لوگ جو ہیں، سورت نور پڑھنے کے بعد آپ نے جو اپنا جائزہ لیا، اپنا محاسبہ کیا، تو آپ اپنی جو احساسات ہیں یا آپ کی جو پلاننگ ہے، آپ اس کو بھی ساتھ شیئر کر سکتی ہیں. تو میرے پاس جو سوال آئے ہیں جو کہ کلاس کے دوران بھی آتے رہے، تو ابھی اس کو آخر پر جو ہے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں. اچھا، ایک سوال آیا ہے کہ زنا کا حکم جو ہے یہ کب نازل ہوا؟ تو زنا جو ہے نا، اس کو قابل سزا جرم جو ہے وہ 3 ہجری میں قرار دیا گیا، کیونکہ اس سے پہلے جو زنا تھا وہ قابل سزا جرم جو ہے وہ قرار نہیں دیا گیا تھا، اور 3 ہجری میں اس کو جو ہے وہ قابل سزا جرم جو ہے وہ قرار دیا گیا. اور دوسرا ایک سوال ہے کہ سورت نور جو ہے یہ کب نازل ہوئی؟ تو سورت نور جو ہے یہ 6 ہجری میں جو ہے یہ نازل ہوئی ہے، سورت احزاب کے کئی مہینے بعد. ہاں، اصل میں جو ہے وہ سورت نور جو ہے وہ بعد میں نازل ہوئی ہے، سورت احزاب پہلے نازل ہوئی ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ قرآن کے اندر جو سورتیں ہیں تو وہ نزول کے اعتبار سے جو ترتیب ہے تو اس ترتیب سے اس کے اندر رکھی گئی ہیں، یہ آگے پیچھے بھی ہیں. ہاں، تو اسی طرح آیتیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض جو ہے وہ پہلے نازل ہوئی، بعد میں نازل ہوئی، لیکن مضمون کی مناسبت سے آپ نے جو ہے وہ جہاں آپ نے مناسب سمجھا وہاں اس کو رکھ دیا. اور بعض جگہ ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو مشورہ دیتے تھے کہ فلاں جگہ جو ہے وہ اس کو آپ رکھ دیں. تو یہ بات تو کوئی ایسی مشکل نہیں ہے کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ سورت نور جو ہے وہ احزاب کے کئی مہینے بعد نازل ہوئی. تو اصل بات یہ ہے کہ احزاب پہلے نازل ہوئی اور سورت نور جو ہے وہ بعد میں نازل ہوئی، لیکن سپاروں میں اگر آپ دیکھیں ترتیب کے لحاظ سے تو یہ ہمیں 18ویں پارے میں مل رہی ہے، جبکہ سورت احزاب جو ہے یہ 22ویں کے آخر میں جو ہے وہ شروع ہوتی ہے. 22ویں، ہاں ہاں، تو یعنی وَمَنْ يَقْنُتْ تو اصل میں 21ویں کے آخر میں اور پھر 22ویں کے شروع میں ہمیں ملتی ہے. اچھا، اس کے بعد ایک اور سوال ہے کہ ڈلیوری کے بعد خواتین جسم پر جب تیل کی مالش کرواتی ہیں تو کیا وہ اپنا ستر جو ہے وہ کھول سکتی ہیں؟ تو اسی طرح ایک سوال یہ ہے کہ ستر میں اور حجاب میں کیا فرق ہے؟ کہ ستر میں اور حجاب میں جو ہے وہ کیا فرق ہے؟ تو پہلے یہ کر لیتے ہیں کہ ستر اور حجاب میں فرق کیا ہے، کیونکہ آپ لوگوں نے ویسے پڑھا کہ ستر اور حجاب میں کیا فرق ہے. تو اصل میں ستر جو ہے جسم کے ان اعضاء کو چھپانے کا نام ہے، ان اعضاء کو ڈھانپ رکھنے کا نام ہے جن کا ڈھانپنا ہر حال میں ضروری ہے، خواہ کوئی دیکھ رہا ہو یا پھر نہ دیکھ رہا ہو. اور جو حجاب ہے، حجاب کیا ہے کہ وہ ستر کی نسبت جو ہے وہ ایک اضافی جو ہے وہ چیز ہے. کیونکہ جو ستر ہے اس میں، جیسے عورت کا ستر جو ہے وہ کیا ہے، عورت کا ستر عورت کے لیے یہ ہے کہ ناف سے لے کر گھٹنے تک. لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ پھر عورتیں جو ہیں وہ عورتوں کے سامنے جو ہے وہ ننگی رہیں گی، بلکہ ان کو جو ہے وہ کیا کرنا ہے، ان کو اپنے آپ کو جو ہے وہ چھپانا ہے اور اپنا جو ستر ہے اس کا ان کو جو ہے وہ خیال رکھنا ہے. और अब आप देखें कि फिर जो मर्द हैं, तो मर्दों का जो है वो सतर क्या है, कि उनका सतर जो है वो नाभ से लेकर घुटने तक है। तो इस सिलसिले में हमें जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से सतर के बारे में जो है वो पता चलता है कि ये है कि मर्द के लिए सतर के हुदूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाभ से घुटने तक मुकरर किए, कि मर्द का, आपने फरमाया मर्द का सतर इसकी नाभ से घुटने तक है, यानी इस हिस्से जिस्म को, जिस्म के इस हिस्से को वो अपनी बीवी के अलावा किसी के सामने कसदन अगर खोले तो हराम है, यानी उसको खोलने की इजाजत नहीं है ना। इसी तरह हजरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में एक दफा एक सहाबी कहते हैं हजरत जरहद कि मेरी रान खुली हुई थी, तो आपने फरमाया क्या तुम्हें मालूम नहीं कि रान छुपाने के काबिल जो है वो चीज है। ये तिर्मिजी और अबू दाऊद की रवायत है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपनी रान कभी ना खोलो। तो ये है सतर की हुदूद के एक मर्द जो है उसका सतर उसकी नाक से घुटने तक है, और औरत का जो सतर है तो वो क्या पता चला कि औरत का सतर औरत के लिए वही हदूद हैं जो मर्द के लिए मर्द के सतर की हैं, यानी नाभ से घुटने तक का हिस्सा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि औरत जो है वो आम औरतों के सामने इसका मतलब और आधी बस यहां तक ही अपने आप को ढांपेगी, ऊपर का हिस्सा नंगा रखेगी, बल्कि मतलब ये है कि नाभ से घुटने तक का हिस्सा हर हाल में ढांकना फर्ज है और दूसरे हिस्सों को ढांकना जो है वो फर्ज नहीं है। तो ये जो है ये तो पता चल गया कि हमें ये चीज है सतर। अब दूसरी यहां बात है कि हिजाब किसे कहते हैं, है ना। तो हिजाब जो है मैंने आपको इसका रूट भी बताया था, हाँ हा जीम बा, और इसके माने क्या है हिजाब के, आड़ को कहते हैं, ओट को कहते हैं। तो हिजाब जो है इसके मानी ये हैं कि ये सतर से एक जायद चीज है, इसको आप नोट कर लें। सतर तो वो चीज है ना जिसे महरम मर्दों के सामने खोलना भी नाजायज है ना। जैसे बाप के सामने औरत सतर नहीं खोल सकती, भाई के सामने नहीं खोल सकती, तो औरत अपना सतर सिर्फ अपने शौहर के लिए और मर्द भी अपना सतर सिर्फ अपनी बीवी के लिए खोल सकते हैं, इसके अलावा किसी के सामने सतर नहीं खोला जा सकता, है ना। तो सतर क्या है कि जिसे महरम मर्दों के सामने भी औरत नहीं खोल सकती शौहर के अलावा। लेकिन रहा है हिजाब, तो ये सतर से एक इजाफी चीज है, जायद चीज है, जिसे औरतों और गैर महरम मर्दों के दरमियान हायल किया गया है। हिजाब जो है वो सतर से एक जायद चीज है जिसे औरतों और गैर महरम मर्दों के दरमियान हायल किया गया है। मसलन आप इस आयत से हिजाब को समझ सकती हैं जो सूरत नूर की आयत 31 है, जिसमें कहा कि अपना बनाओ सिंघार ना दिखाएं बजुज उसके जो खुद जाहिर हो जाए, और अपने सीनों पर अपनी ओढ़नियों के आंचल डाले रहें, अपना बनाओ सिंगार अपने महरम जो रिश्तेदार हैं उनके सामने तो दिखा सकती हैं, लेकिन फिर बहुत से लोगों की फहरिस्त गिनवाई कि इन लोगों के सामने वो अपना जेबो जीनत जाहिर नहीं कर सकती, जिसमें गुलाम नौकर चाकर और औरतें भी कहा है मेल जोल की, है ना, औरतों के अलावा। तो असल बात क्या है कि हिजाब में जब औरत होती है तो वो क्या होता है कि उसने अपने आप को जो है वो छुपाया हुआ होता है। जैसे इस सिलसिले में आप इस मिसाल को भी जो है वो आप देख सकती हैं कि हुक्म हिजाब जब आया तो मुंह का पर्दा शामिल हो गया, हुक्म हिजाब। तो हिजाब क्या है कि आपने कोई ऐसा ऊपर चादर ओढ़ ली, आपने ऊपर बुरका ओढ़ लिया जिससे आप अपनी जेबो जीनत को भी छुपा रही हैं, अपने सीने को छुपा रही हैं, अपना जेबो जीनत छुपा रही हैं। तो जैसे हमें जेबो जीनत के बारे में क्या आता है कि वो नहीं दिखाना चाहिए ना, मेकअप उसमें है, कपड़े हैं, खूबसूरत कपड़े, जेवर वगैरह, तो ये किसी को नहीं दिखाना चाहिए। अब क्या कहा कि वो औरतें अपना जेबो जीनत तो नहीं दिखाती, क्या मला युबदीना जीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिन्हा, जो उसमें से जाहिर हो जाए। यानी इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि जैसे उसका हिजाब खुद से खुल जाए, चादर उड़ जाए, तो सतर से ऊपर जो उसने हिजाब के तौर पर اوڑا ہوا ہے، پہنا ہوا ہے، جو مزید ایک روک ہے، رکاوٹ ہے دوسرے لوگوں کے لیے کہ وہ اس کی زیب و زینت کو نہ دیکھ سکیں، تو اس کو جو ہے وہ حجاب کہا جاتا ہے۔ اچھا، اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے، جیسے ابھی کسی نے سوال پوچھا ہے کیا عورتیں ڈلیوری کے بعد خواتین سے جسم پر تیل کی مالش کروا سکتی ہیں، ستر کھول سکتی ہیں، یہ جائز ہے کہ نہیں؟ تو اس سلسلے میں آپ یہ بات دیکھ لیں کہ عورت کا عورت سے جو ستر ہے، تو اس کے علاوہ ان کو اپنے جسم کو جو ہے وہ چھپا نہیں چاہیے، تو اتنے حصے پہ آپ تیل مالش جو ہے وہ کروا سکتے ہیں۔ اور آپ اگر کوئی بھی خاتون، یعنی تیل مالش کی بات نہیں، کوئی دوائی فرض کیا لگانی ہے، وہ خود نہیں لگا سکتی، اگر خود لگا سکتی ہے تو پھر وہ اپنا ستر کسی کے سامنے نہیں کھول سکتی، اور اگر وہ خود نہیں لگا سکتی تو پھر جو ہے وہ کسی کے، یعنی اب تیل تو اپنی طاقت وغیرہ کے لیے ہے نا، ایسا تو نہیں ہے کہ وہ بیماری ہے اور وہ تیل نہیں لگائے گی تو مر جائے گی، ہے نا، خدا نخواستہ۔ تو اصل بات کیا ہے کہ آپ، مطلب ہمارے ہاں ایک رواج بھی ہے کہ تیل لگایا جاتا ہے اور صحت سمجھتے ہیں کہ صحت اچھی ہوتی ہے، اور یقیناً ہو سکتا ہے ہوتی بھی ہوگی، لیکن ناف سے لے کر جو ہے وہ عورت کا جو سطر ہے گھٹنے تک، وہ اس کو پھر کسی کے سامنے نہیں کھولنا چاہیے، ہے نا۔ تو اس سے بھی خامخواہ جو ہے ایک بے حیائی کی فضا پیدا ہوتی ہے۔ اچھا، ایک سوال یہ میرے سامنے آیا ہے کہ کیا عورت جو ہے وہ اپنی ٹانگوں کے بال اور نیچے کے بال جو ہے وہ کسی سے اتروا سکتی ہے؟ تو اب آپ دیکھیں کہ ویسے جو یہ غیر ضروری بالوں میں آتے ہیں نا، زیر ناف کے جو بال ہیں نیچے کے، وہ بال، اور پھر اگر کوئی اپنے ٹانگوں کے بھی اتارنا چاہتے ہیں تو غیر ضروری بال ہے، منع نہیں ہے اسلام میں اتارنا، لیکن یہ کہ پھر وہی بات کہ ناف سے لے کر گھٹنے تک آپ کا کسی کے سامنے نہیں کھلنا چاہیے، یعنی آپ کسی، کوئی بھی کوئی کسی بیوٹی پارلر کے میں جائے، کسی عورت سے کہے کہ میرے اتار دو، تو یہ چیز اسلام میں جو ہے وہ جائز نہیں ہے، کیونکہ ہم عورتیں اگر یہ کام کرتی ہیں اپنے شوہر کے لیے، اپنی خوبصورتی کے لیے، جس بھی مقصد کے لیے آپ کرتے ہیں، اسلام اس کی اجازت تو دیتا ہے، لیکن آپ کو خود اتارنا پڑے گا، ہے نا۔ تو اگر، لیکن اگر کوئی بوڑھا ہے، کوئی بیمار ہے، تو اس کو جو ہے وہ اس کی مدد کی جا سکتی ہے، یعنی بعض بوڑھے بیمار وہ یہ کام کر ہی نہیں سکتے اپنا، تو پھر اس کی مدد کی جا سکتی ہے۔ اچھا، پھر سوال آیا ہے کہ جو حضرت مائز اسلمی تھے اور جو بی بی غامدیہ تھی، انہوں نے تو زنا کیا اور ان کو تو اس کی سزا مل گئی، تو جو ان کے ساتھ تھے، جن کے ساتھ انہوں نے کیا، اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا، اور نہ ہی یہ کہ ان کو سزا بھی ملنے کا پتہ نہیں چلتا۔ تو میں نے یہ بات آپ کو بتائی تھی کہ اسلام جو ہے نا، اس سلسلے میں جو ہے وہ تحقیق اور تفتیش نہیں کرتا۔ اسلام کا طریقہ کار یہ نہیں ہے کہ جو بھی زانی ہے یا گناہگار ہے، اس کے پولیس کے اہلکار یا کچھ لوگ ہوں جو گناہگاروں کو ڈھونڈتے پھریں اور پھر ان کو ڈھونڈ کر لائیں اور پھر ان کو سزا دی جائے۔ تو آپ دیکھیں کہ ہمیں کوئی بھی ایک واقعہ ایسا نہیں ملتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اور آپ کے دور میں یا صحابہ کے دور میں، کہ زانیوں کو ڈھونڈ کر کسی کو رجم کیا گیا ہو یا سنسار کیا گیا ہو۔ تو یہ دونوں بھی وہ تھے جنہوں نے خود اقرار کیا تھا، اور جب انہوں نے اقرار کیا تو ان لوگوں کا ذکر نہیں کیا، جب انہوں نے ذکر نہیں کیا تو آپ نے ان لوگوں کا پوچھا نہیں، یا وہ خود آ کے اقرار کرتے تو پتا چلتا، تو اس لیے نہ ان کا نام ملتا ہے اور نہ ہی ان کو کوئی سزا دی گئی۔ تو ان کو بھی سزا جو دی گئی تو اس کی وجہ کیا تھی کہ انہوں نے اقرار کیا تھا، اقرار کیا تھا۔ اور آپ دیکھیں کہ آپ نے بی بی غامدیہ سے بھی کیا کہا تھا کہ جاؤ حمل ہو جائے تو پھر اس کے بعد آنا، پھر کوئی آپ نے کسی صحابی کو نہیں بھیجا، جاؤ اس کو لے کر آؤ، اس کی ولادت ہو چکی ہے بچے کی، کوئی صحابی نہیں گیا اس کو، ان کو پکڑ کر نہیں لایا، خود ہی آئی، پھر آپ نے کہا کہ جاؤ بچے کو دودھ پلاؤ، پھر خود ہی چلی آئی، کیونکہ ان کا جو گناہ تھا وہ اتنا گلٹی تھی، اتنا ان کو اس کا افسوس تھا کہ میں نے یہ کام کیا، وہ چاہتی تھی دنیا میں میرا معاملہ صاف ہو جائے نا، پھر خود ہی آئی، ہے نا۔ یعنی کہتے ہیں بچہ پیدا ہوا تو بچے کو لیے ہوئے آئیں، آپ نے کہا کہ نہیں اس کو دودھ پلاؤ، اب جب تک کہ یہ تم سے فارغ نہیں ہو جاتا دودھ پلانے سے، پھر گئی، پھر آئیں، اور پھر ہاتھ میں بچے کے ٹکڑی کا، روٹی کا ٹکڑا دیا ہوا تھا، میں یہ بات بھی دیکھ رہی تھی अब पकड़ाया मतलब रोटी का टुकड़ा कि अब ये रोटी खाने लग गया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम ये बहुत ही इंसानों से मोहब्बत करने वाला, रहम करने वाला दीन है। कौन है जो कहते हैं कि इस्लाम संदिलाना मजहब है या इस्लाम की सजाएं बड़ी वहशियाना है? तो आप देख लें कि एक सोच दे दी ताकि हसब नसब विरासत इज्जतें लोगों की लुटने ना पाए, और एक इस्लामी और पाकीजा सोसाइटी जो है वो परवान चढ़े, तो इसलिए हमें ऐसा मिलता ही नहीं है। अच्छा, फिर मेरे सामने एक सवाल आया है कि क्या गैर मुस्लिम को सलाम कर सकते हैं, जब ये कहा जा रहा है कि सलाम जो है वो करना चाहिए। तो इस सिलसिले में जो है सलाम के बारे में हमें जो पता चलता है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यहूदो नसारा को सलाम करने में पहल न किया करो, और जब तुम राह में इनसे मिलो तो इनको एक तरफ सिमट जाने पर मजबूर कर दो, यानी अब बड़े वकार और दबदबे के साथ चलो। लेकिन अगर वो हमें सलाम करें तो फिर जो है क्या कहना चाहिए? गैर मुस्लिम को सलाम करने की जरूरत अगर पेश आई जाए तो फिर अस्सलाम वालेकुम कहने की बजाय कोई और ऐसे जुमला बोलना चाहिए कि जिसमें जैसे अदब आदाब वगैरह के अल्फाज, लेकिन उसमें जो है वो यानी सलाम नहीं उनको कर सकते, क्योंकि अस्सलाम वालेकुम का मतलब है कि तुम पर सलामती हो। जब उन्होंने खुद इस्लाम को इख्तियार नहीं किया तो अब उनको सलामती की दुआ नहीं दे सकते कि दुनिया या आखिरत में अल्लाह उनको सलामती से अब नवाजेगा, जब तक कि वो खुद सलाम को इख्तियार नहीं कर लेते। और आप देखेंगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हरकल के नाम जब खत लिखा था तो आपने इन अल्फाज में सलाम किया था, सलामुन अला मन इत्तबल हुदा। आपने कहा था सलाम है उस पर जो हदायत की पैरवी करे, यानी अगर तुम कर लो तो तुम पर भी, वरना फिर तुम पर सलाम जो है वो नहीं है। फिर अगर किसी महफिल में मुसलमान और काफिर इकट्ठे ही बैठे हों तो फिर क्या करना चाहिए? तो एक दफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी महफिल से गुजरे जहां मुस्लिम और काफिर इकट्ठे मिले जुले बैठे थे, तो आपने फिर अस्सलामु अलैकुम कह दिया, यानी गोया के अब मुसलमानों को तो मिल जाना था उसमें से, तो बाकियों के लिए आपने सलाम जो है वो नहीं किया था। फिर एक सवाल मेरे सामने ये आया है कि मुसाफिया जो है इसकी क्या दुआ है? तो मुसाफिया की दुआ है यग़फिरुल्लाहु लना वलाकुम। मुसाफिया का मतलब होता है दोनों हाथों को, हथेलियों को आपस में मिलाना, हाथ जो आप मिलाते हैं तो सलाम के साथ हाथ जो आपस में मिलाना। और ये सहाबा में भी मुसाफा करने का रिवाज था। हजरत कतादा ने हजरत अंस रजी अल्लाह से पूछा क्या सहाबा में मुसाफा करने का रिवाज था? हजरत अंस रजी अल्लाह ने जवाब दिया कि जी हाँ था, ये बुखारी की रवायत है। इसी तरह हजरत सलमा बिन विरदान कहते हैं कि मैंने हजरत मालिक बिन अंस रजी अल्लाह को देखा कि लोगों से मुसाफिया कर रहे हैं। मुझसे पूछा कि तुम कौन हो? मैंने कहा बनी लैस का गुलाम हूं। तो आपने मेरे सर पर 3 बार हाथ फेर कर फरमाया खुदा तुम्हें खैर और बरकत से नवाजे। तो इससे क्या बात पता चलती है कि जब दो मोमिन सलाम करते हैं और आपस में मुसाफिया करते हैं तो उनके गुनाह झड़ जाते हैं। जैसे हजरत हुज़ैफा कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब दो मोमिन मिलते हैं और सलाम के बाद मुसाफिया के लिए एक दूसरे का हाथ अपने हाथ में ले लेते हैं तो दोनों के गुनाह इस तरह झड़ जाते हैं जिस तरह दरख्त से सूखे पत्ते। और मुकम्मल सलाम किसे कहते हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुकम्मल सलाम ये है कि मुसाफे के लिए हाथ भी मिलाए जाएं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल था कि आप जब कोई आपका हाथ अपने हाथ में लेता और आप मुसाफिया करते, आप उस वक्त तक उसका हाथ नहीं छोड़ते थे जब तक कि वो खुद ना छोड़ दे। बड़ा आपका मोहब्बत और प्यार का जो था वो अंदाज था। अच्छा, फिर मेरे सामने और जो सवाल है कि क्या सलाम का कब सलाम करना चाहिए, यानी अगर कोई कुरान पढ़ रहा है तो सलाम करें या नहीं, इसी तरह कोई खाना खा रहा है तो सलाम जो है वो कर सकते हैं कि नहीं? तो असल बात ये है कि इन हालात में ना सलाम करने से परहेज करना चाहिए। मैंने पहले भी शुरू में भी आपको एक दफा बताया था और मैं ये बात मैं फिर आपको बता देती हूँ। एक तो ये कि जब कुरान और हदीस पढ़ने पढ़ाने में या सुनने सुनाने में मसरूफ होना तो सलाम नहीं करना चाहिए, है ना? और हमें कुरान से दलील भी मिलती है कि जब कुरान पढ़ा जा रहा हो, सुनाया जा रहा हो, वाइजा कुरिया अलैहिमुल कुरान, जब कुरान तुम पर पढ़ा जा रहा हो तो क्या करो, खामोश हो जाओ, फनसितू, तो फिर तुम खामोश हो जाओ। तो अब उसमें क्या है कि मसलन आप क्लास में बैठे हुए हैं, सुबह टीचर ने सलाम किया और स्टूडेंट ने सलाम किया, सलाम दुआ के बाद क्लास शुरू हो गई। अब उसके बाद जो है बाज लोग लेट आते हैं, अब क्लास शुरू है, कहीं भी दौरे तफसीर हो रहा है, दर्स हदीस की महफिल चल रही है, आप बाद में आने वालों में हैं किसी भी वजह से, फिर आप खामोशी से बैठ जाएं, आप क्लास में खलल ना पैदा करें सलाम करके भी। तो कुरान और हदीस पढ़ने पढ़ाने या सुनने में मसरूफ हो तो सलाम नहीं करना चाहिए। इसी तरह कोई खुतबा दे रहा है ना, खुतबा देने में और सुनने में भी उस वक्त जो है वो सलाम नहीं करना चाहिए। क्यों? इसलिए कि खुतबा जो है ना, खुतबा क्या है, जैसे आप जब जुमे की नमाज पढ़ी जाती है तो उसमें क्या होता है, जुमे के दिन दोपहर के वक्त जब आप जुमा पढ़ते हैं तो आम दिनों में आप कितनी नमाज पढ़ते हैं, आप चार फर्ज पढ़ते हैं, तो जुमे के दिन जब आप पढ़ते हैं तो आप क्या करते हैं, आप दो फर्ज पढ़ते हैं, तो जुमे के दिन नमाज तो आधी हो गई है जो फर्ज नमाज है, तो जो बाकी आधी है वो खुतबा है। तो खुतबे की हैसियत भी गोया के ऐसे है गोया के नमाज में आप हैं। तो इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से भी हमें क्या बात पता चलती है कि जब खुतबा हो रहा हो तो बिल्कुल खामोश बैठकर अदब और एहतराम के साथ जो है वो खुतबा सुनना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने गुसल किया फिर नमाज जुबा पढ़ने आया और आकर अपने मुकद्दर की नमाज पढ़ी, फिर खामोश बैठकर निहायत तवज्जो और यकसुई के साथ खुतबा सुनता रहा, यहाँ तक कि खतीब खुतबे से फारिग हुआ, फिर इसने इमाम के साथ फर्ज नमाज अदा की, तो इसके वो सारे गुनाह बख्श दिए गए जो इससे एक जुमे से दूसरे जुमे तक सरजद हुए, बल्कि 3 दिन के मजीद गुनाह बख्श दिए गए। ये इमाम मुस्लिम ने इसको रवायत किया है। तो ये है कि खुतबे के दौरान जो है बिल्कुल बात जो है वो नहीं करनी चाहिए, हत्ता के किसी को इशारा भी नहीं करना चाहिए, यानी इतनी खामोशी से जो है वो जुमे का खुतबा जो है वो सुनना चाहिए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा करने से मना किया। तो जब कोई खुतबा देने और सुनने में मसरूफ हो, इसी तरह जब कोई अजान या तकबीर कह रहा हो, जब किसी महफिल में किसी दीनी मौजू पर गुफ्तगू हो रही हो, तो कोई किसी को दीनी अहकाम समझा रहा हो, है ना, इसी तरह जब उस्ताद पढ़ाने में मसरूफ हो, अब कुरान हदीस कोई दीन का इल्म दिया जा रहा है तो सलाम उस वक्त नहीं करना चाहिए। इसी तरह कोई रफ़ हाजत के लिए बैठा हुआ हो, जब इंसान रफ़ हाजत के लिए बैठा हुआ होता है तो फरिश्ते उससे दूर हो जाते हैं, है ना, उनको तकलीफ होती है, अब सलाम करेंगे तो बहरहाल इसमें जो है बेतअल्लुकी का जो है ना वो इजहार करना चाहिए और सलाम करने से जो है वो परहेज करना चाहिए, यानी अदब से एहतराम से खामोशी से, यानी बेहतर है कि परहेज करें और हम सलाम जो है वो ना करें। अब आप देखें कि सवाल फिर ये कि क्या खाना खाते हुए सलाम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। जैसे मसलन आप देखें खाना खाने वाला शख्स जो है उसके लिए ये है कि अगर उसने अजान सुनी है तो अजान का जवाब ना दे, वो खाना खा रहा है तो वो जो है वो बेशक फिर वो सलाम ना करें, वो खाना खा रहा है, और वैसे भी जो खाना खा रहा है वो बैठा हुआ खाना खा रहा है ना, तो हमें हदीस से क्या पता चलता है, बाहर से आने वाला बैठे हुए को सलाम करें, तो अगर आप बैठे हुए खाना खा रहे हैं तो बाहर वाला आपको सलाम करेगा, है ना। अच्छा, फिर इसी तरह जहां पे डांस हो रहा हो, गालियां दी जा रही हैं, फोश मजाक किए जा रहे हैं, दीन को बदनाम किया जा रहा है और बिदतें बेदीनी के लिए लोग जो हैं वो महफिल उन्होंने सजाई हुई है, तो लोगों की ये राय है कि उस वक्त भी सलाम ना करके उनसे अपनी बेतअल्लुकी का जो है ना वो आप इजहार करें उस मौके पर, कि गोया कि आपको अच्छा नहीं लग रहा जो कुछ वो कर रहे हैं। एक और सवाल है कि क्या खाना जो है वो टेबल पर खा सकते हैं कि नहीं, है ना। तो सवाल ये है कि फिर साथ ये कि थाल में सबको खाना खाना चाहिए, और फिर ये कि अलग अलग नहीं खाना चाहिए। यानी कुछ लोगों का ये ख्याल है कि खाना एक थाल में हो और अलग अलग ना हो। तो इसका जवाब तो आज की आयत में आपने पढ़ ही लिया, सूरत नूर की आयत 61 में, लैसा अलैकुम जुनाहुन अंताकुलू जमीअन औ अशताता, कि इसमें कोई हर्ज नहीं कि तुम लोग मिलकर खाओ या अलग अलग खाओ। तो किसी भी चीज में हुलू ना करें। अब ये भी नहीं कि बहुत ही भूख से हलकान हो रहे हैं, बहुत ही परेशानी है, और जब तक इकट्ठे नहीं होंगे तो खाएंगे नहीं, दवाई खानी है, या तबीयत बाजों की खराब हो जाती है, तो अकेले भी कभी जरूरत है तो खा सकते हैं और मिलकर भी खा सकते हैं, और बस मुस्तकिल आदत ना बना लें कि हमेशा ही आप फिर अलग ही खाएं। और मैंने आपको ये भी बताया कि मिलकर खाने में जो है वो बरकत है। तो बाकी रही बात टेबल पर खाने की, तो इस सिलसिले में टेबल जो है वो जैसे बाज लोगों को टेबल में खाने में सहूलत लगती है, बाज को नीचे बैठकर खाने में सहूलत लगती है ना? तो असल चीज ये है कि खाना बैठकर हम खाएं। तो हमें जो भी, हमें अल्लाह ताला ने जो भी आपको नवाजा हुआ है, तो आप अपने हालात जो भी हैं उसके मुताबिक जो है वो खाना खा सकते हैं, तो जिस तरह आपको ज्यादा सहूलत महसूस होती है। इसलिए कि अब ये है कि जिनके पास डाइनिंग टेबल नहीं है, तो इसका ये नहीं मतलब कि वो उधार पे पैसे लेके डाइनिंग टेबल लाएं, या वो नीचे बैठकर खाएं तो उनको अपनी बड़ी कमाईगी का एहसास हो। तो दस्तरखान बिछाकर नीचे बैठकर खाना जो है ये भी पसंदीदा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और अगर कोई शख्स जो है वो जैसे मतलब रवाज या रस्म ना बनाकर खाएं, आपके दिल के अंदर ये कनात होनी चाहिए और आपके दिल के अंदर ये सुकून होना चाहिए, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर हम अमूमी जिंदगी को देखते हैं तो उसमें हमें जो है वो सादगी मिलती है। आपने दुनिया पर आखरत को तरजीह दी है, लेकिन हमें कोई भी एक ऐसी हदीस यूं नहीं मिलती कि जिससे हमें ये बात पता चलती हो कि लोग टेबल पर बैठ कर ना खाएं, है ना? तो इससे फिर क्या बात पता चलती है कि फिर हम अपनी सहूलत के लिहाज से आप देख सकते हैं, तो बाज औकात वो घर के हालात इतने अच्छे नहीं होते, किराया दे नहीं सकते, इतना बड़ा घर होना चाहिए जिसमें डाइनिंग टेबल भी हो, डाइनिंग टेबल के लिए भी पैसे नहीं है, किराए के लिए भी पैसे नहीं। तो पता इसको जो है वो नाक की क्या कहना चाहिए, हाँ, नाक का मसला नहीं समझ लेना चाहिए। बाज औकात बेटियों को जहेज देने में अब इतना लोग बढ़ गए हैं, जैसे अभी हाल ही में एक मसला एक औरत का सामने आया है कि वो इतनी गरीब है कि बच्ची के निकाह के मौके पर वो चंद जो मेहमान आएंगे उनको वो खाना नहीं खिला सकती, लेकिन जो फर्नीचर ही देना है वो लाखों से ऊपर है, और हर चीज कर्ज पर, हर चीज कर्ज पर। तो किसी चीज को नाक का मसला नहीं बनाना चाहिए। इस सिलसिले में ना एक बात याद रखें, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में बहुत अच्छा खाया पिया पहना ओढ़ा भी, लेकिन मामूल आपका नहीं था। मामूल क्या था कि आपने बहुत दिन फाके के भी गुजारे, बल्कि आपके ऊपर 30-40 दिन ऐसे गुजर गए तकरीबन, बाजू का 2 महीना के घर में चूल्हा नहीं जला, और बाजू का ये था कि यानी कितने दिन तक आपके घर में कोई चीज खाने की नहीं होती थी, तो आपने बिलाल रजी अल्लाह से कहा कुछ है खाने के लिए, या आप सहाबा से कहते, मेहमान घर आते आप मस्जिद नबी में जाकर ऐलान करते, फिर अपने घरों में भी भेजते उम्महातुल मोमिनीन के पास भी कि कुछ हो खाने के लिए, तो कहती हर एक कहती कि आज हमारे पास कुछ भी नहीं, फिर आप सहाबा से जो थे वो अपील करते। और मुझे इस सिलसिले में ये बात बड़ी अहम लगती है कि एक दफा हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आपको कैसे देखा कि एक तरफ पानी का मशकीजा था और दूसरी तरफ जो थी वो चंद खजूरें थी, और तीसरी तरफ आप एक चटाई पर जो थे वो लेटे हुए थे, और चटाई के निशान आपके जिस्म पर पड़े हुए थे। उमर फारूक रजी अल्लाह ने आपको जब इस हाल में देखा तो देखकर रोने लगे, कहने लगे कैसरो किसरा के बादशाह तो दुनिया के मजे लूटे और दो जहान का बादशाह इस हाल में। तो आपने फरमाया ए उमर, क्या तुम इस पर राजी नहीं کہ ان کے لیے دنیا ہو اور ہمارے لیے آخرت. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دن تہجد کی نماز قضا ہو گئی. آپ نے اپنی بیویوں سے پوچھا کہ یعنی آنکھ نہیں کھلی تھی تو آپ نیچے جو چادر بچھا کر سوتے تھے نا, وہ چادر کیسی تھی؟ کہ اس کو آپ کی جو بیوی تھی نا اس نے دوہرا چوہرا کر دیا تھا, تھوڑی نرمی پیدا ہو گئی. تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ تائیوش, یہ آسانیاں, یہ سہولتیں جب بڑھتی چلی جاتی ہیں, جب پیٹ بھر کر کھائیں گے, جب ہر وقت اچھی, باہر سردی ہے لیکن اندر ہمارے ہاں تو موسم مناسب ہے, ہمیں ایئر کنڈیشن تو چاہیے پر سینٹرل چاہیے, وہ پسند نہیں ہے اب اے سی جو زیادہ ہو جاتا ہے یا کم ہوتا ہے, سینٹرل تو ہر وقت ایک اس پر رہتا ہے نا, بڑا اچھا لگتا ہے وہ نا. اسی طرح ہیٹ کا سسٹم بھی جو سینٹرل پورے گھر کا ایک ہوتا ہے. تو باہر کچھ بھی موسم ہے, برف گر رہی ہے, بارش ہو رہی ہے, شدید گرمی کا موسم ہے کہ لوگ مر رہے ہیں, لیکن میرے گھر کے اندر اے سی ہے اور ہیٹنگ مناسب ہے, تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ بعض اوقات نعمتوں میں انسان اتنا کھو جاتا ہے اور انہیں کا ہو جاتا ہے پھر اللہ کو بھول جاتا ہے. تو اصل چیز کیا ہے کہ جو چیزیں حرام ہیں نا وہ قرآن نے بتا دی, جو چیزیں ٹھیک نہیں ہیں نا وہ ہمیں حدیث سے بھی پتا چل جاتی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی. لیکن باقی جو چیزیں ہیں نا جس پر آپ نے خاموشی اختیار کی یا خاص طور پر کوئی حکم نہیں دیا, تو نہ اس کو اپنی زندگی کی جو ہے وہ مجبوری سمجھنا چاہیے اور نہ ہی اسے اس طرح پرہیز کرنا چاہیے گویا کہ وہ حرام ہے. تو آپ اپنے حالات, اپنی ضرورت, اپنی کشائش کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو دل کے اندر قناعت ہونی چاہیے اور دل کے اندر جو ہے اللہ نے جو کچھ مجھے اور آپ کو دیا نا اس پر اپنے دل کو راضی کر لیں, یہ سب سے اہم بات ہے, ورنہ کہ زندگی کے مسائل کبھی حل نہیں ہوں گے. ادھار, قرض, سود, پھر اسے اپنا معیار زندگی بڑھانا یہ پسندیدہ نہیں ہے. اچھا پھر اسی طرح جو ہے ایک سوال میرے پاس آیا ہے کہ اگر شوہر بیوی اور بچوں کے مستقبل کی خاطر بیوی کا زنا معاف کر دے تو اس کو رجم کر دیا جائے گا یا نہیں؟ اس سلسلے میں آپ نے سورت نور میں جو ہے وہ تفصیل سے پڑھا کہ اگر اسلامی حکومت تک, یعنی جو بھی امیر ہے اس تک پہنچ جائے یہ بات, پتہ چل جائے کہ کسی عورت نے یا کسی مرد نے زنا کیا ہے, تو جو امیر ہے نا اس کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ زنا کے جرم کو معاف کر دے, تو کجا یہ کہ شوہر ہے نا. تو اس سلسلے میں آپ دلیل میں وہ واقعہ بھی بیان کر سکتی ہیں کہ ایک روز ایک شخص بڑی پریشانی کی حالت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کچھ اس طرح بات کرنے لگا کہ اس کی زبان پوری طرح کھلتی نہیں تھی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر سے کہا اسے الگ لے جا کر معاملہ پوچھو, حضرت عمر رضی اللہ عنہ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو ہے پوچھا تو اس نے بتایا کہ اس کے ہاں مہمان آیا ہوا تھا اور اس کی لڑکی سے وہ ملوث ہو گیا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے کہا تیرا برا ہو, تو نے اپنی لڑکی کا پردہ کیوں نہ ڈھانک دیا؟ تو آخر کار پھر لڑکے اور لڑکی پر مقدمہ قائم ہوا, دونوں پر حد جاری کی گئی اور مطلب پھر ان کو نکاح کر کے بھی ایک سال کے لیے جو ہے وہ شہر بدر کر دیا گیا. تو اس واقعے سے بھی ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے, اگر وہ باپ اس وقت اسلامی حکومت تک نہ پہنچتا, نہ بتاتا, تو پھر کسی نے بھی کچھ نہیں کہنا تھا, پھر اللہ جانتا اور ان کا معاملہ جانتا. اور اصل بات کیا ہے کہ اس زمانے میں تو اسلامی حکومت قائم تھی. تو یہ جو ہے نا آپ نے یہ بھی پڑھا کہ یہ جو زنا کا قانون ہے یا قذف ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو دین اللہ کہا ہے نا. آپ نے یہ بات پڑھی کہ اللہ کے دین کو قائم کرنے کے معاملے میں تمہیں جو ہے نرمی نہیں ہونی چاہیے. ولا تاخذکم بهما رافت فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر, کہ جب زانی مرد اور زانیہ عورت پر آپ کوڑے لگائیں گے 100, تو ان پر ترس کھانے کا جذبہ اللہ کے دین کے معاملے میں تمہیں دامنگیر نہ ہو اگر تم اللہ تعالیٰ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو. اور کیا کہا کہ دین اللہ, اللہ کا دین. تو یہاں پہ اللہ کے دین سے مراد نماز, روزہ, حج اور زکوٰۃ نہیں ہے, بلکہ اللہ سے دین کے سے مراد حکومت, اسلامی جو اسٹیٹ ہے اس کا قانون ہے, مملکت کا قانون بھی دین ہے. تو جس طرح حکومت کی ذمہ داری اقامت صلات, اقامت زکوٰۃ کرے, اسی طرح حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کا قانون اور نظام شریعت جو ہے وہ اس کو نافذ کرے، اور اگر وہ حدوں کو قائم نہیں کرے گی تو حد یعنی سزا زنا کی قائم نہیں حکومت کرے گی، جیسے چوری چوری پر، شراب پر، ڈاکے پر، یا جو ہے وہ زنا پر، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ دین وہاں پر جو ہے وہ ادھورا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلامی اگر حکومت ہی نہیں ہے، اگر کہیں ایسی جگہ پہ کوئی ہے اسلامی حکومت نہیں ہے اور وہاں پہ کوئی ایسا ہے اور پتہ چلا تو بس اس پر خاموشی رہنی چاہیے. بہرحال شوہر نہیں معاف کر سکتا، اللہ کا اور اس کا معاملہ ہے کہ اللہ پھر اس کے ساتھ ان اس بندے یا بندی کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا. اس کو جو بھی وہ کوئی ایسا ہے، کسی کو پتہ چل گیا ہے تو اس کو پھیلائے نہیں، خاموش ہو جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ شخص بھی استغفار کرے اور نیکیاں کرے، کیونکہ جو ہیں وہ نیکیاں جو ہیں نا وہ گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، ہے نا. تو یہ بات جو ہے وہ اہم ہے. پھر میرے پاس جو ہے ایک اور سوال ہے کہ غیر مسلم اگر آپ کو سلام کرے تو کیا جواب دیں. میں ابھی آپ کو بتا چکی ہوں کہ آپ وعلیکم کہیں گے، بس جو تم نے کہا وہ تم ہی پر، مطلب اور زیادہ نہیں کریں گے. پھر آپ کا ایک اور سوال ہے کہ زینت میں کیا خوبصورت جوتے اور پرس اور جو یہ اینک ہیں، گلاسز ہیں، کیا یہ بھی شامل ہو سکتی ہیں؟ تو اس سلسلے میں میں آپ کو پہلے یہ بات بتا بھی چکی ہوں کہ زینت جو ہے وہ کسے کہتے ہیں. زینت جو ہے وہ بیوٹی کو کہتے ہیں، حسن کو اور خوبصورتی کو کہتے ہیں، اور زینت کے اندر یہ چیزیں جو ہیں وہ شامل ہوتی ہیں. نمبر ایک، خوبصورت کپڑے. جو بھی خوبصورت کپڑے ہیں وہ رنگ، بعض کپڑے ہیں سادہ لیکن کلر بڑا ایسا ہے، ہلکا ہے یا ڈارک ہے لیکن وہ بڑا خوبصورت لگتا ہے، ہے نا. تو خوبصورت کپڑے، اسی طرح کڑھائی ہے، سلما ستارہ ہے، خوبصورت کپڑے. اور نمبر دو جو ہے اس کے اندر زیور آ جاتا ہے، زیور، ہر طرح کا زیور جو بھی پہنتے ہیں، تو زیور سے عورتوں کا چہرہ خوبصورت لگتا ہے، بھرا بھرا سا لگتا ہے. اور آپ دیکھ لیں، اسی لیے تو کبھی کان عورتیں نکالتی ہیں، کبھی گلا دوپٹہ ایسے لیتی ہیں، جب میاں ہار پہن کر آتی ہیں تو سارے لوگوں کو جو ہے وہ نظر آئے بالوں. اور اس کے اندر زیور کے ساتھ ساتھ زیور میں پھر ہاتھ کا، انگوٹھیاں، پاؤں، یہ سارا زیور جو ہے وہ شامل ہے زیب و زینت کے اندر. پھر اس کے بعد جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ ساتھ ساتھ میک اپ شامل ہے. جتنی بھی عورتیں آرائش کرتی ہیں اپنے اپنے آپ کو بنانے، سنوارنے کے لیے، سجانے کے لیے، یہ بھی اس کے اندر جو ہے وہ شامل ہوتی ہیں. اچھا، اب سوال یہ تھا کہ اب جوتے پرست، اور جوتے پرست تو نظر آتے ہیں نا، تو اس سلسلے میں پھر مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ بلا یوب دینا زینت ہننا، ویسے تو اپنی زینت دکھاتی نہیں ہے، اللہ ما ظاہرہ منہا، لیکن جو خود بخود ظاہر ہو جائے. تو یہ اس کی تعریف میں آ سکتی ہیں، جیسے چادر کسی نے اوڑی بھی تھی اور چہرہ چھپایا ہوا تھا، ہوا سے وہ اڑ گیا، بہت باہر ہوا تھی، اس کی زینت کھل گئی، ہے نا. لیکن وہ چادر جو اوپر اوڑے گی، وہ زینت کو چھپانے کے لیے جب اوڑے گی تو چادر وہ زینت والی نہیں ہونی چاہیے. جو اوپر حجاب یا برقعہ اوڑے گی وہ زینت والا نہیں ہونا چاہیے، سلما ستارہ کڑھائیاں تو سادے ہونے چاہیے تاکہ ان میں کشش نہ ہو. کشش کو چھپانے کے لیے، زینت کو چھپانے کے لیے تو آپ نے حجاب، جلباب، چادر اوپر لی، اگر وہ بھی زینت ہے تو پھر جو ہے وہ اس کا مقصد فوت ہو جاتا ہے. تو یہ جو ہے بعض کہتے ہیں کہ ماں زہرہ منہا میں یہ آ جاتا ہے کہ جیسے آپ نے انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، چونکہ ہاتھ، بعض لوگ جب جو لوگ اس میں ہاتھوں کو شامل نہیں کرتے زینت میں، بعض لوگ ہاتھ اور چہرہ زینت میں شامل کرتے ہیں، وہ چہرہ بھی چھپاتے ہیں، وہ ہاتھ بھی، وہ پاؤں بھی. آپ دیکھیں گے بعض عورتیں ہاتھوں پہ بھی ان کے گلوز ہمیشہ رہتے ہیں اور پاؤں پہ بھی ہمیشہ جرابیں رہتی ہیں. وہ ہاتھ اور پاؤں کو زینت میں شامل کرتے ہیں اور وہ اس کو چھپاتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں یہ تو بڑی ایکسٹریمسٹ ہے نا. تو لیکن وہ چونکہ اس کو زینت میں سمجھتے ہیں، بعض لوگ چہرے کو زینت میں سمجھتے ہیں، جیسے صحابہ کے زمانے میں چہرہ زینت میں شامل کیا جاتا تھا. میں نے آپ کو ام خلاق کی دلیل دی، پھر آپ نے واقعہ اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ والی مثال دیکھی کہ حضرت صفان جو تھے انہوں نے یہ آیتیں نازل ہونے سے پہلے ان کو دیکھ لیا ہوا تھا، اس لیے उन्होंने उनको देखते ही इन्ना लिल्लाह जब पढ़ा, उनकी जब आवाज सुनी तो हजरत आयशा रजी अल्लाह ने जब उठी तो फौरन ही अपने ऊपर जो है वो चादर डाल ली, अपने आप को छुपा लिया, है ना। तो उस जमाने में सहाबियात पर्दा करती थी, तो चेहरा जीनत में शामिल समझा जाता था। तो इसी तरह हजरत जो है अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह के बारे में आता है कि एक दफा जो है वो उन्होंने बकायदा एक बड़ी सी चादर ली, अपने आप को पूरे को छुपाया, थोड़ी सी आंख खुली रखी, ऐसे घूंघट लिया कि जिससे रास्ता नजर आ सके। तो कहा ये है इससे मुराद। आप सूरत अज़ाब में हम इसके बारे में तफसील से पढ़ेंगे। तो अब रही बात मतलब जूते की, तो जूते में मुफस्सरीन ने ये शामिल किया है कि ये भी जीनत में आ जाता है इस तरह से कि अल्लाह ताला कहते हैं कि जैसे अल्लाह ताला ने कहा कि जो जीनत उन्होंने छुपाई है वो लोगों को पता ना चले। मसलन यानी जो नेक औरतें कैसे करती हैं, वला या दरिबना बे अर्जुलेहिन्ना, और वो अपने पोल जमीन पर मारती भी नहीं चलती, लियो लमा युक्फीना मिन जीनता हिन, ताकि अपनी जो जीनत उन्होंने छुपा रखी हो इसको इसका लोगों को पता चल जाए। आयत 31 में है ये बात भी। तो इसकी तफसीर में उलमा जो है वो क्या बात बताते हैं कि औरतें जब चलेंगी तो चलते वक्त जो हैं वो पांव जमीन पर मार मार कर नहीं चलेंगी, जोर जोर से नहीं चलेंगी, ऐसे एड़ी वाले जूतों का इस्तेमाल नहीं करेंगी कि जिससे मर्द मुड़ मुड़ कर पीछे देखें, क्योंकि एड़ी वाले जूते और इंसान जब चले और टक टक की आवाज आए तो लोग जो है वो फिर मुड़ मुड़ कर देखते हैं। तो यानी ये जो है ना कि पांव जमीन पर मारती भी ना चलें, तो इसकी तफसीर में उलमा ये कहते हैं कि ना उनके जेवरों की झंकार सुनाई देनी चाहिए कि जीनत है। तो जब जेवरों की झंकार मर्द सुनेंगे तो अल्लाह जाने उनके दिल पर क्या गुजरेगी कि ये हसीना या नाजनीना या ये औरत जो जा रही है तो ये इतना जेवर जिसकी ये आवाज भी आ रही है, तो उसके हवास मुश्तिल होने लगते हैं, उसके दिल की कैफियत कैसी होने लगी। तो जेवर की छन छन से उसके दिल में ये ख्याल आ सकता है मर्द के दिल में कि अल्लाह जाने इसने कैसा जेवर पहन रखा है, ये कैसी लग रही है। तो छन छन करते चलेगी तो पांव जमीन पर सिर्फ नहीं लगेगा, किसी आशिक आशिक मिजाज के दिल पे भी जाके लगेगा। तो बाज औकात ऐसे क्या होता है, शहवानी जज्बात जो है ना वो भड़क उठते हैं, तो इसलिए कहा। तो बहरहाल अगर ईद का मौका है, शादी का मौका है, खास कोई ऐसा मौका है और आम जिंदगी में आप एहतियात करती हैं तो फिर इल्ला मा ज़हरा मिन्हा की तारीफ में ये आ सकता है, जूता है, पर्स है, क्योंकि आम रूटीन अगर ऐसी है तो इसका मतलब है कि आपको फिर हमें इस बात का कोई जो है वो एहसास नहीं है। तो इसी तरह फिर आप ग्लासेस को भी कह सकती हैं इल्ला मा ज़हरा मिन्हा की तारीफ में, है ना। और बहरहाल आम तौर पे इससे यही बात पता चलती है कि ज़ेब व ज़ीनत घर के अंदर होनी चाहिए। और उलमा ने तो यहां तक भी कह दिया कि खुशबू भी औरत बाहर जब निकले तो लगा कर ना निकले, वरना वो ऐसी खुशबू का इस्तेमाल करे जिसकी खुशबू जो है वो हल्की हो उस तक आए और मर्दों तक दूर तक ना जाए। अच्छा, इस सिलसिले में एक खास बात याद रखने की है कि एहतियात करनी चाहिए, कोई अहम ये बड़ी अहम बात है, इसमें कोई शक नहीं है। और अब तो बड़े परफ्यूम आम हैं, बड़ी खुशबू और इतर आम है जो सिर्फ मर्दों के लिए हैं और बात सिर्फ औरतों के लिए हैं। तो जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि औरतें ऐसी खुशबू इस्तेमाल करें जिसका रंग तेज हो और बू हल्की हो, है ना। लेकिन एक बात है, जैसे हम लोग जब यहाँ पे रहते हैं तो बाज़ लोग, जिसमें मैं तो इस वक्त औरतों से हम बात कर रहे हैं, तो वो लोग ना बिल्कुल ही जैसे ये कोई खुशबू या परफ्यूम या और क्या होता है जो इस्तेमाल करते हैं, हाँ डिओड्रेंट जो होता है ना, ये औरतें इस्तेमाल नहीं करती। अभी जैसे ईद की पार्टी थी और मस्जिद में जाने का इत्तफाक हुआ और मतलब और जिससे मिले मतलब वो जिम्मेदारान में से था जिसने वो ईद की पार्टी अरेंज की थी, लेकिन बहुत बदबू आ रही थी, है ना। तो बाज औकात यानी क्या होता है कि हम अपनी सफाई का एक तो ख्याल नहीं रखते। आपको पता है ये बात कि गैर जरूरी बाल जो हैं, जो गैर जरूरी बाल हैं उनकी ज्यादा से ज्यादा हद क्या है, 40 दिन। अब इसका ये नहीं मतलब कि 40 दिन हो ही तो उतारे, है ना। बाकी जो ये जो अपर लिप्स है लोग कितने दिनों में उतारते हैं, जो उतारने वाले है ना, ख्याल रखते हैं ना अपनी ब्यूटी का, अपने मेकअप रूटीन का। तो गैर जरूरी बाल भी जल्दी उतारने चाहिए, है ना। इतने बड़े कर्दे में एक दिन बैठी सोच रही थी, अगर इसी तरह मौत आ गई तो फिर ये कि आप सोचेंगे, मतलब पाक हूं इस तरह और हर वक्त तैयार हूं कि मौत का फरिश्ता आए और जब मुझे ले जाए तो मेरी हर चीज पाक साफ, मेरे अमल भी, मेरा जिस्म भी, मेरी आदतें भी, मेरा दिल भी, मेरी नीयत भी, मैं पाक साफ। मैं आज इस बात पे भी सोच रही थी कि सफेद कपड़े पहने तो तबीयत दिल को अच्छे लगते हैं ना, तो बस अल्लाह ताला हमारे अमलों को इस तरह कर दे, हमारे दिलों को इस तरह कर दे साफ सुथरे, है ना। तो बहरहाल एक तो गैर जरूरी बाल खुद उतारना, बच्चों को तालीम देना, बच्चे बालिग होने लगते हैं, बड़े हो रहे होते हैं, बाज लड़कों को माए इसलिए नहीं कहती कि बाप कहेगा और बाप को खबर ही नहीं होती कि अब मैंने बच्चों को ये बात भी बतानी है, खिलौने और बाकी चीजों की तो खबर रहती है। तो जो ऐसी बातें उनकी एजुकेशन में कोई शर्म और हया नहीं महसूस करनी चाहिए, एजुकेट करना चाहिए बच्चों को और एहसास दिलाना चाहिए। तो जब बेटी बेटियों को हम शुरू से ये तालीम देंगे तो फिर जो है वो सहूलत हो जाएगी इसमें, मतलब ये हया है, ये पाकीजगी है। और इसी तरह जो है वो ये जो डिओडोरेंट है इनका इस्तेमाल करना, या ऐसी परफ्यूम या खुशबू का जो बहुत तेज ना हो लेकिन हल्की हल्की खुशबू, जो हमें खुद से आए, दूसरे को हमसे खुश बदबू ना आए। तो बाज लोग फिर ये जो मुसलमान हैं या पर्दा करने वाले हैं या हिजाब स्काफ में होते हैं तो बाज लोग उनसे दूर दूर रहते हैं, कहते हैं कि स्मेल आती है गर्मियों के मौसम में, खास तौर पर जो लोग सफाई का नहाते नहीं है या सही से ख्याल नहीं रखते। तो हम आप सोचें कि मेरा ये रवैया भी इस्लाम पर एक बोझ है, मैं इस्लाम का सरमाया नहीं बन रही, फिर मेरी वजह से लोग ये समझते हैं कि मतलब ऐसे ही गंदे मंदे होके हम निकल सकते हैं। तो एक तरफ जेबो जीनत का ये हाल है यहाँ के लोग भी, कि बाथरूम में बिल्कुल पानी का इस्तेमाल ना करना और नहाना ना और बस परफ्यूम छिड़कते रहना, एक ये इंतहा है। और दूसरी तरफ कहीं हमारे अंदर भी ये चीज ना पैदा हो जाए कि बस ऊपर से जिलबाब का मतलब ही ये समझ लिया कि बगैर कपड़े तब्दील किए, बगैर इस्त्री के गंदे मंदे कपड़े, कंघी नहीं करनी, यानी स्टाफ का मतलब ये नहीं है कि लोग कंघी ना करें, है ना, बस ऊपर स्कार्फ पहन लेना, बुरका तो पहन लेना नहीं, मतलब अपने आप अपनी तबीयत के अंदर साफ सफाई और सुथराई जो है ना उसको हमें लाना चाहिए। अच्छा ये एक सवाल था। तो अच्छा इसके बाद आप में से वो बहने सवाल तो और भी बहुत से होंगे आपके और अब आ रहे हैं, तो अब ये कर लेते हैं कि आप में से वो लोग जिन्होंने सूरत नूर को पढ़ा और आप शेयर करना चाहते हैं तो हमारी ये बहन अपनी फीलिंग को हमारे साथ शेयर करना चाहती हैं।
सूरते नूर पढ़ रही थी और हमारी टीचर हमें पढ़ा रही थी, तो मैंने 1971 में अपना बुरका उतारा। मैं पहले बुरका पहनती थी, उसके बाद हम 1971 में लाहौर आए तो मैंने अपने मियाँ को कहा कि मैंने बुरका उतारना है। वो तो नहीं मान रहे थे, बहुत स्ट्रिक्ट मान रहे थे, लेकिन खैर मेरी जिद के आगे मान गए वो। लेकिन ये है कि हम लोगों ने हमेशा, हमें बचपन से यही तरबियत मिली है सर पे दुपट्टा ओढ़े रखना, ना शादी से पहले परमिशन थी हाफ स्लीव पहनने की, ना शादी के बाद हाफ स्लीव नहीं पहने। और फिर मेरे मियाँ ने कहा कि ठीक है, अगर तुमने अब बुरका उतारना ही है तो तुमने ओवरऑल पहनना है। मैंने कहा ठीक है, मैं ओवरऑल हमेशा पहना, बड़ी सी चादर ली। लेकिन अब जब ये आयतें पढ़ी और मेरे बाद मेरी फैमिली के काफी लोगों ने बुरका उतारा, और जब ये आयतें से मैं गुजरी तो एक जगह है ना कि अगर आप एक गुनाह करती हैं तो वो जो आपसे गुनाह शुरू होता है बाकी जो सब लोग करने लगते हैं उसका अजाब आपके ऊपर होगा, जो एक अच्छा काम करते हैं उसका सवाब भी आपके ऊपर होगा। तो मैंने अल्लाह ताला से बहुत माफी मांगी, अल्लाह सुबहाना ताला मुझे माफ करे कि मेरे से बहुत जिन लोगों ने बुरका उतारा उसकी भी तो मुझे होगा ना फिर अजाब होगा मुझे। ये तो हो नहीं सकता कि अल्लाह की बात तो नौज बिल्ला झूठी नहीं हो सकती। ये मुझे बहुत फील हुआ। और एक मुझे ये बात फील हुई थी, हम लोग हज करने गए हुए थे, मैं और मेरे मियाँ, हम इकट्ठे थे एलिवेटर में। मेरी रंगत कुछ ऐसी है ना कि मैं जरा धूप में बाहर निकलूँ तो एकदम रेड हो जाता है मेरा कलर। तो एलिवेटर में और भी कोई लोग थे, हालांकि देखें हज करने के लिए आए थे, हज का मकसद है अपने अपने आप नजर को पाकीज़ा रखो, ये वो जो भी। वो मुझे कहने लगा आदमी, और भी औरतें थी, आदमी थे, मेरे मियाँ भी साथ थे। कहने लगा कि आप ब्रिटिश हैं। मैंने कहा नहीं। कहता अच्छा, आपका कलर तो ऐसे लगता है जैसे आप ब्रिटिश हैं। उस वक्त तो मुझे इतना गुस्सा तो मुझे बहुत आया कि मैं इसको कहूँ कुछ, लेकिन सारी एलिवेटर भरी हुई थी। मैंने उसको कहा नहीं भाई, तो मैंने दूसरी तरफ चेहरा कर लिया। लेकिन बाद में मैं जब ये सूरत नूर पड़ रही थी, मुझे इतना हुआ कि मैंने कहा अगर मेरा चेहरा ढका हुआ होता तो वो गैर मर्द मुझे क्यों इस तरह के लाते। और कभी मेकअप नहीं करके मैं बाहर निकली, अल्हम्दुलिल्लाह। कभी नहीं, जैसे मैं देखती हूँ शॉपिंग करने जाती हूँ और कई डॉक्टरों के पास जाती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह ये तो अल्लाह का शुक्र है, कभी नहीं किया मैंने। सिवाय कि कोई शादी की फैमिलियाँ महफिल हो, वो भी हम लोगों की अलग अलग होती है, वहाँ पाकिस्तान में इकट्ठे नहीं होते। हमारी मर्दों की अलग होती है, औरतों की अलग होती है। लेकिन अल्लाह ताला बस आप भी दुआ करें मेरे लिए कि जो मुझसे खता सरजद हुई, अल्लाह ताला मुझे माफ कर दे बारी ताला।
तो हमारी ये बहन जो है, आप देखें कि इससे हमें क्या बात पता चलती है कि अच्छा काम करते हैं तो देकर जितने करेंगे वो हमारे हिस्से में आएगा, और अगर हम कोई गुनाह का काम करते हैं तो पीयर प्रेशर या देखा देखी बहुत से लोग करते हैं ना। और आप देख लें कि सूरत आराफ में भी अल्लाह ताला कहते हैं काला ले कुल्लिन दे पुंग वला किल्ला तालमून, कि उनसे अल्लाह ताला फरमाएगा सभी का दुगना है लेकिन तुमको खबर नहीं। और यानी मा कद्दमत वाखरत, क्या आगे भेजा और क्या पीछे छोड़ा। तो हम सबको अपने बारे में बहुत कॉन्शियस होना चाहिए कि मुझे देखकर इस्लाम को, इस्लाम के करीब कितने लोग होते हैं और इस्लाम से दूर कितने होते हैं। और अगर अब तक की जिंदगी में कोई भी गुनाह या कोई भी गलतियां हुई हैं और आज भी हमें एहसास हो गया तो देर नहीं है, इस्तग़फार कर सकते हैं। उसका कफारा ये है कि ज्यादा से ज्यादा नेकियां करें, सदका दें, रोजा रखें और अल्लाह नेकियों को ज्यादा से ज्यादा जो है वो आम करें। ये हमारी एक और बहन है,
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सूरह नूर की एक एक आयत जो है वो वाकई दिल पे इतना असर कर रही थी। मतलब जब स्टार्ट किया था तब तो अल्लाह ताला जो सबसे पहली आयत थी उसमें पढ़ा अंजलना फरदना और फिर अंजलना, बार बार जब अल्लाह ताला हम की तकरार कर रहे थे तो उससे पढ़ने से ही ना एकदम हैबत अल्लाह ताला की और उसका जलाल जो था ना वो दिल पर तारी हो रहा था। और जैसे जैसे आयते मजीद पढ़ते गए, जिना की, कज़ब की और सारी दूसरी, तो बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा डर लग रहा था। लेकिन जब तफसीर उनकी पढ़ी और तो उससे जो था ना वो बहुत ज्यादा दिमाग कहना चाहिए कि खुल गया। और ये पहले जो खौफ और हैबत थी वो इस चीज में टर्न हुई कि वाकई अल्लाह ताला कितना अरहमुर रहीमीन है कि उसने कितने अच्छे अहकामात हमारे माशरे को और इस्लामी माशरे को पाक और साफ रखने के लिए जो नाजिल किए हैं। उसके अलावा इसकी सूरह नूर की सारी ही आयतें इतनी ज्यादा दिल पर असर कर रही थी और हर आयत के पीछे एक ना एक वाकया और हर वाकया इतना खूबसूरत, खासतौर पर वाकया इस कितना खूबसूरत लगा। उसमें सबसे ज्यादा जो वो पहले भी पढ़ा था लेकिन इसमें इस वक्त जो सबसे ज्यादा दिल पे असर किया वो हजरत अबू अय्यूब अंसारी का जो किरदार था, जो उन्होंने हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत सफवान के बारे में जो अपनी राय दिया था, तो उस पर बहुत ज्यादा सोचा, बहुत ज्यादा अपना रवैया भी सोचती रही कि देखें हमारा क्या रवैया होता है, हम अगर ऐसी कोई बात सुन लेते हैं या ऐसा कोई छोटी सी मामूली सी ही कोई बात होती है तो हमारी जबानें कैसे फिसल रही होती हैं और लगाम ही नहीं लगता हमारी जबानों को। तो बल्कि खास तौर पे हम वक्त निकाल निकाल के फोन करते हैं और दूसरे से लेना चाहते हैं कि कुछ हमें सुनगुन मिल जाए। तो ये चीज इतनी ज्यादा मुझे बहुत ज्यादा असर किया, मैंने सोचा कि इंशाल्लाह इसको अपनी जिंदगी के लिए मसले राह बनाऊंगी। इसके अलावा ये जो सहाबा का किरदार था कि अजान की आवाज सुनते के साथ ही जो था वो उठा हुआ हथौड़ा वापस जरब नहीं उस पर लगाते थे, वो चीज भी बहुत ज्यादा दिल पे असर की। और यही सोचा कि इंशाल्लाह ताला हर नमाज जो है वो अव्वल वक्त। इसके साथ साथ आगे बढ़ते गए और जब वो आयते आई नूर नूर की और अल्लाह नूर समावाती वाला, तो बस उसके बाद तो ऐसा लगा कि चाहा कि जिंदगी अब यहीं पे खत्म हो जाए या शायद इस तरह बस ये बाहर के दिन वाली जो बात होती है ना इसी में जान चली जाए और ये बेहतरीन दिन लग जाए कि यही है। और उसके अलावा जो क्लास में भी उसकी स्लाइड्स दिखाई गई थी, उसके अलावा मैंने इसको बहुत पहले से ही मतलब ये आयतें वाकई इतनी खास है कि अक्सर अखबार में के टॉपिक पे या रसायल में टीवी पे भी क्लाइस आती रहती हैं, लेकिन जो इस दफा देखा पढ़ा सुना समझा उसको, उसकी पता नहीं क्या बात खासियत थी कि वो बज ऐसी कैफियत आ रही रही ना, कि जहाँ भी उसके बाद घर जाके भी इन आयतों को लगाया, इंटरनेट से निकाल के लगाया, बार बार सुना, और आजकल तो मुस्तकिल ये जैसे घर जाती हूँ पहले ये लगाती हूँ और लगा के सुनती रहती हूँ, और ऐसा लगता है कि पता नहीं एक नूर का एक हसार सा है, और ये फिर ये दुआ भी करती हूँ हर वक्त अल्लाह ताला से। अब एक जो नूर की दुआ थी जो तहज्जुद में पढ़ने के, अल्लाहुम्मा अजअल फी कल्बी नूरा, वो और ज्यादा मुझे ऐसा लगता है कि समझ में आने लगी और उसको और ज्यादा मैं मांगने लगी ये नूर।
अस्सलाम वालेकुम। ये सब कुरान से और सूरह नूर पढ़ने से पहले मैं अपने बेटे के लिए जो लड़की देख रही थी, तो मेरे जहन में ये था जैसे मैंने जिंदगी गुजारी है, बस आंख में हया है लोगों से, ऐसा नहीं था, कभी सर नहीं ढका, महफिलें भी हमारी ज्वाइंट होती थी, कपड़े भी नजर आते थे। जिसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जैसे पढ़ते गई तो मैं कहा भी इतना जरूरी है, अब मेरा सेकेंड स्टेज ये है कि नहीं मैं अपने लिए बहू जो देखूँ उसको कोई देखे ना, उसके जिसम की नुमाइश लोगों को नजर ना आए, तो मतलब अब मेरा सेकेंड स्टेज ये है कि मैं बुरके वाले देख रही हूँ। लेकिन इसके बाद जब मैंने सुना कि हमें चेहरा को भी ढांकना चाहिए, जिसम की खुशबू भी नजर नहीं आनी चाहिए, तो अब जहन में ये है कि वाकई मुकम्मल बापर्दा ही औरत होनी चाहिए, जो हमारे लिए भी यकीनन जन्नत में हमें ले जाएगी, और सुकून भी मिलता है ये चीज़ें पढ़ के और देख के, मतलब जिंदगी में बहुत चेंज सा नजर आता है अगर आप थोड़ा थोड़ा देखते रहो और उसको।
तो ये सब बातें जो हैं असल में आप अपनी अमली जिंदगी में नाफिज करने के लिए हैं और अपना जायजा लेने की हैं।